आप लोग जैसा आदेश करेंगे आप लोग कहिए तो हिंदी में कुछ बोलूं, और नहीं तो आप लोग अंग्रेजी में कहें तो अंग्रेजी में बोलूं, या मैं हिंदी में बोलूंगा और पीछे से ये लोग अंग्रेजी में इन लोगों को ट्रांसलेट कर देंगे। तो यदि आप लोग आदेश दें तो हिंदी में बोलूं, क्योंकि बहुत से लोग हिंदी में समझ
सकते।
ऐसा तो आप ही सामने आए तो बोलो
इंग्लिश, तो सभी अमेरिकन डिवोटी एक साइड में बैठ जाएं सभी। सो
टुडे आई विल टेल समथिंग एंड लेटर ऑन दे विल ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, because here are some more Hindi audience. So, and I'm always speaking in English in morning classes. So you should forgive me for this. And if all can understand in English, then I may tell some.
Everything okay? Englishman? And then, आप मंदिर में हुआ था कि इंग्लिश में बोले थे और फिर थोड़े हिंदी भी।
समीरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि श्री गौर भक्त जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ये चय गुसाई करी चरण बंदन जहाँ हई विघ्न सभीष्ठ पुराण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम। मैं सबसे पहले अपने श्री श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाशिष्मद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अपनी श्रद्धा पुष्पांजलि ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात डोंट डू दैट मल्ली वन जिनको संन्यास दिया था शिष्यमत भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जो इधर में आए थे सर्वत्र विश्व में प्रचार किया वे हमारे शिक्षा गुरु हैं। मैं उनको 1946 से जानता हूँ। 1946 आज 50-55 वर्ष हो गए। उस समय इस्कॉन का जन्म नहीं हुआ था। इस्कॉन का जन्म हुआ है 1977 के करीब में कहीं, उसके पहले, जिसमें स्वामी जी नहीं आए थे। अभी एकदम नवयुवक थे, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के शिष्य थे। उन्होंने हमारे गुरुजी से सन्यास लिया। मैं उस सन्यास का कार्यकर्ता, मैं ही सन्यास कराया उनको। कपड़े पहनाना बनाना, ऐसा दंड देना और यज्ञ इत्यादि मैंने किया। जब वो इस देश में प्रचार करने के लिए आए तो उनकी जितनी पुस्तकें, सारी पुस्तकें, उनका मृदंग, करताल, गीता, भागवत हमारे ऊपर में छोड़ दिया। हमने उसको पैकिंग इत्यादि कर करके अकेले कलकत्ते भेजा, कलकत्ते से फिर वो यहाँ पर आई। उनके पास में एक पैसा भी नहीं था, निष्किंचन परम वैष्णव थे। उस समय मैं अपनी चादर उनके लिए बिछा देता, उनकी फटी पुरानी चादरें थी। हम लोग दोनों मिलकर के रसोई बनाते, वो बिलते और मैं सेंकता, दोनों मिलकर के ठाकुर जी का भोग दे करके खाते। भागवत का ट्रांसलेशन उन्होंने हमारे आश्रम में रह करके किया। इसी से समझिए जो 1946 से लेकर के जब तक उनका संन्यास हुआ 1954 या, और इस तब तक मैं उनकी सेवा में था। उनका रसोई बनाना, देखना, खिलाना पिलाना सब कुछ करता था। अंत में संन्यास लेने के बाद में सारी पुस्तकें और सारी पुस्तकें उनके मृदंग, करताल, उनके ठाकुर जी जो यहाँ पर उन्होंने प्रतिष्ठा किया है सब हमने भेजा। हमारे पास में उनकी 200-300 पत्र हमारे अंग्रेजी और बंगला और हिंदी में आदान प्रदान के हैं। उन्होंने हमको लाना चाहा था भारतवर्ष से कि हमारे साथ में आइए, प्रचार करेंगे। मैंने कहा जब ही हमारे गुरु जी हैं जिन्होंने आपको संन्यास दिया है, मैं थोड़ी सी, वो बाहर गए हैं, मैं उनकी सेवा में हूँ, यहाँ पर दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मैं पीछे से आपके पास में आऊँगा। उन्होंने कहा जरूर हम आपको लाएंगे। वो महापुरुष थे, उन्होंने सोचा ऐसा, इसलिए सत्य संकल्प होने से जो सोचेंगे महापुरुष लोग वो हो जाता है। जैसे हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने उनको कहा था, स्वामी जी को, अंग्रेजी भाषा में, पाश्चात्य देशों में तुम चैतन्य महाप्रभु के लाइन में राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार करना। तो वो 60 वर्ष के बाद में इधर में आए और इन्होंने हमको बुलाया तो हम 10-15 वर्ष के बाद में आए। किंतु इन्हीं की मर्सी से, इन्हीं की कृपा से इस देश में मैं आया। उन्होंने प्लेटफॉर्म तैयारी किया और उसमें हम उस समय नहीं आए तो इस समय में आए। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हमारा प्रीचिंग उनका प्रीचिंग अलग अलग है, किंतु ऐसी बात कभी नहीं विश्वास करें। हमारे वो शिक्षा गुरु हैं, वो प्रभुपाद जी के लाइन में ही हैं, हमारे रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु के लाइन में राधा कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने गीता ट्रांसलेशन इत्यादि हम लोगों के मठ में बैठ करके किया, बहुत सी पुस्तकें लिखी। और इसके बाद में जब वो जगत को छोड़ने वाले थे, छोड़ना समझते हैं ना, इस जगत से जब विदा होने वाले थे, हमको बुलाया, अपने किसी शिष्य को नहीं कहा जी हमारी समाधि दीजिए, हमको कहा जी हमारी समाधि आप देंगे। विश्वास नहीं किसी पर था, हमारे पर में विश्वास था, इसलिए उन्होंने कहा जी हमारी समाधि अपने हाथों से आप विधि पूर्वक वेद वेदांत उपनिषदों के आधार पर हमारी जैसी व्यवस्था है उसी तरह से आप देंगे। उनके और भी बड़े बड़े गुरु भाई थे किंतु किसी को नहीं कहा। वृंदावन में बन महाराज जी, पुरी महाराज जी, बहुत से लोग थे और उनके शिष्य तो हजारों थे, किंतु हमारे ऊपर उन्होंने विश्वास किया। उन्होंने कहा जी नारायण महाराज यदि आ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनको बुलाओ। और मैं गया तो हमको हाथ पकड़ करके आंख से आंसू भर गया। उन्होंने कहा महाराज जी आप हमारे शिष्य भी हैं, हमारे गुरु भाई भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, फ्रेंड भी हैं, आप जरूर हमारी समाधि देंगे। मैंने कहा जी आप कोई चिंता मत कीजिए, कोई भी चिंता करने के, आप जो कुछ आदेश देंगे मैं जीवन भर पालन करूंगा। उन्होंने कहा जी हम इन लोगों को ले आए, उनको पूरी शिक्षा नहीं दे सके, ये सब कंप्यूटर में ये सब चीजें हैं,
टेप रिकॉर्डर में
भी ये सब चीजें हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे बाद में इन लोगों को बतलाएंगे ये कैसे चल रहा जाता है। मैंने उस समय तमाल कृष्ण जी और सब जितने थे, ब्रह्मानंद जी उस समय, भवानंद और जितने भी थे वहाँ के लीडर सब हमारे पास में आए। महाराज जी ने कहा जी इनकी बात सुनो, वैसा करना, हमने कहा जी आप इनके जाने के बाद में तुम लोग लड़ना मत, रुपए पैसे के लिए और शिष्य के लिए मत लड़ना, मतभेद तो इसी के लिए होता है, रुपए पैसे के लिए और शिष्य के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, इसके लिए तुम लोग मत लड़ना। तुम लोग इनके जो मिशन है, इनके जो आदेश हैं, उनका जो प्रचार है, इसको आगे बढ़ाना विश्व में, जहाँ जहाँ प्रचार नहीं वहाँ सब मिलजुल करके करना, और हम तुम्हारी पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। जब वो चले गए उसी रात में बात हुई, सवेरे वो रात में ही चले गए, हमारे बाद में और किसी से बातचीत नहीं किया। इसके बाद हमने उनको विधिवत समाधि दी, उनके आदेशों को पालन किया। आज भी उनके उपदेशों को ही पालन करता हुआ चला जा रहा। उन्होंने कहा था इसलिए आया, इसलिए मैं आज उनको प्रणाम कर रहा हूँ। वो जहाँ भी रहे हमारे ऊपर में अपनी कृपा दृष्टि रखें। इसलिए शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में अंतर नहीं होता, ये तो चैतन्य चैतन्य सब जगह उन्होंने ही लिखा है। इसलिए हमारे गुरु जी जैसे हैं, जिन्होंने उनको संन्यास दिया, हमको भी संन्यास दिया, हमको हरिनाम इत्यादि दिया, दीक्षा दिया, इन दोनों के चरणों में मैं सबसे पहले पुष्पांजलि अर्पित करके आज मैं हिंदी भाषा में कुछ आप लोगों के सामने कहने जा रहा हूँ। इसलिए आप लोग मत समझेंगे मैं उनसे डिफरेंट हूँ। हो सकता है कि शब्दों में कुछ अंतर हो, किंतु वही पुरानी शराब नए बोतल में जैसे, वैसे ही पर वैसे ही मैं उन्हीं की बातों को मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ, उन्हीं के विचारों को उन्होंने रूप गोस्वामी और महाप्रभु जी से विचार को ले आया आज मैं आपके सामने। आज हिंदी भाषा में मैं श्री रामचंद्र जी की कुछ कथाओं को बतलाऊंगा, जिसको भक्ति कहते हैं। भक्ति किसको कहते हैं इसको बतलाऊंगा। विशेष करके कुछ लोगों की ऐसी धारणा है, भ्रांत धारणा, भूल है कि तुलसीदास जी मायावादी थे। सबसे पहली बात, तुलसीदास जी परम भक्त थे और परम मुक्त थे। उनकी बातें लोग नहीं समझ पाते क्योंकि हिंदी नहीं जानते, संस्कृत नहीं जानते, इसलिए उनकी बातों को गलत समझते हैं। अरे जिसको हनुमान जी स्वयं रामचंद्र जी का दर्शन किया है,
चित्रकूट के
घर जिसके सिर में स्वयं तिलक लगा रहे हैं, चित्रकूट के घाट पर सही भाई संतन की भीड़, तुलस देश दास चंदन किसे तिलक देत रघुबीर, एक एक दोनों दो दो बार। अरे जहां पर वो रामायण लिख रहे थे वहां पर चोर आए रात में, उन्होंने सोचा जिनके पास में माल बहुत होगा, और राम और लक्ष्मण जी धनुष लेकर के पहरा दे रहे हैं, ये साधारण व्यक्ति है जिन्होंने वेद उपनिषद शास्त्र सबको एक साथ में लेकर उसका ट्रांसलेशन करके संस्कृत के उपनिषदों का, वेदों का, विशेष करके श्रीमद् भागवत का ट्रांसलेशन ये तुलसी का रामायण है। लोग समझते नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, इसका गलत अर्थ लेते हैं। बिना गुरु के पास में भागवत और रामायण पढ़ने से आदमी नहीं समझ सकता है, उल्टा समझेगा। लोग कहेंगे जी सिया राम मैं सब जग जाने, यही तो मायावाद है, सबको सिया राम करें, ऐसा मत समझो। सिया राम का अर्थ ये भागवत से उन्होंने लिया है, बदंति तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते, भागवत का ये श्लोक है। यदि तुलसी की रामायण मायावादी है तो श्रीमद् भागवत उससे भी पहले मायावादी ग्रंथ है, ये समझो। वेदों का सार है, निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादं वृद्धौ संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूभावुका। श्रीमद् भागवत जैसे भक्ति का प्रधान ग्रंथ है, वैसे तुलसीदास का भी उसी का हिंदी में रूपांतर और अनुवाद है, कोई भी अंतर नहीं। जो अंतर देखता है वो खुद मायावादी है, ये समझो पहले। उसको तत्व का ज्ञान नहीं, उसको अक्षर का ज्ञान नहीं। इसलिए सबसे पहले तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे भागवत में एक जगह लिखा, भागवत के अंत में, ब्रह्म इत्यादि से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत में ग्रंथ है जिसमें भगवत तत्व का निरूपण किया गया। और कैवल्यैक प्रयोजनम, कैवल्य ही हमारा प्रयोजन है। मायावादी लोग कहते हैं कि यह भागवत में लिखा है जो कैवल अर्थात मुक्ति ही हमारा प्रयोजन है, किंतु इसका अर्थ ही नहीं है। भागवत में लाखों जगह मुक्ति को कहा गया है कि ये वैष्णव लोग नहीं लेते हैं, उनको गालियां दिया गया है। मुक्ति के देने पर भी भगवान देते हैं किंतु वैष्णव लोग नहीं लेते हैं, उनके भक्त लोग नहीं लेते हैं। दियामानम अपि न ग्रहणंती बिना मत सेवनम जना, वैष्णव लोगों को, भक्त लोगों को भगवान मुक्ति देते हैं, वो लोग नहीं लेते हैं। नहीं नहीं, मुक्ति की जरूरत नहीं है, वो बहुत घृणित चीज है, भगवान की सेवा चाहते हैं। तो इसमें जो कैवल्य है ये केवल प्रेम, केवल प्रेम किसको कहते हैं, तुलसीदास जी के शब्द में सुनिए। काम ही नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतरा प्रियला गहु मोहि राम। कामी को जैसे नारी प्यारी होती है, जैसे लोभियों को दाम अर्थात तो अर्थ प्यारा होता है, हे रघुनाथ जी आपके चरण में हमारा प्रेम हो, ये बतलाओ मायावाद है? ये कभी मायावाद नहीं। इसी को श्रीमद् भागवत में बतलाया गया तुलसी की तरह ये, और हमारे चैतन्य चरितामृत जो हमारा ग्रंथ है जिसको स्वामी जी ने लिखा, लिखा क्या, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना बजु बधु वर्गेण जा कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणमलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम मतभिदम नत्तातरो न परः। कहते हैं कि गोपियों की जो आराधना है, काममयी जो प्रेममयी जो उपासना है, यही सबसे श्रेष्ठ उपासना है। नंद बाबा जी का वात्सल्य है, सुबल सखा इत्यादि का सख्य भाव है, किंतु इनसे बहुत ऊपर गोपियों की जो आराधना है काममयी प्रेममयी, ये सबसे उत्तम है। उसी को तुलसीदास जी ने यहां पर काम कहा, अंतर कहां रहा? कोई भी अंतर नहीं है। यदि कहता है तो उसके बात पर विश्वास नहीं करना है, नहीं तो ये महापुरुष के चरणों में अपराध हो जाएगा। खबरदारी से बचने की चेष्टा करेंगे। कोई कोई वल्लभाचार्य जी को भी कहते हैं ये भक्ति के विरोधी थे, किंतु ये हमारे रूप सनातन के बहुत प्रिय मित्र थे। वो कहते हैं क्या, एक श्लोक बतलाऊं, वल्लभाचार्य जी, मधुरम बदनम मधुरम बदनम मधुरम क्या
हसितम मधुरम मधुराधिपते
अखिलम मधुरम। अरे बतलाओ तो ये मायावादी लिखेगा? कहते हैं क्या, श्याम सुंदर शिखंड शेखर इसमें हास मुरली मनोहर राधिका रसिक मां कृपा निधे स्वप्रिया चरण चिंकिरी करू। कितना सुंदर लिखते हैं वल्लभाचार्य जी और उनके पुत्र लोग, विट्ठल जी लिखते हैं, श्याम सुंदर शिखंड शेखर जो मुरली हाथ में लिए हुए बजा रहे हैं, त्रिभंग रूप में खड़े हैं, कदंब वृक्ष पर ऐसे हिले हुए अधर पर मुरली विराजित है, अत्यंत सुंदर रूप से वेणी बजा रहे हैं, और आंखों से तिरछी आंखों से सबके हृदय में बाण जैसे बेद करके उनके हृदय को ले रहे हैं। हे श्याम सुंदर, आपकी जो प्रिया जी राधिका जी हैं उनकी चरण की किंकरी हमें बनाओ। मतलब ये मायावाद है, ग्रंथों को तो पढ़ा नहीं किसी ने, गुरु से सुना नहीं, कोई धारणा ही नहीं उनकी बनी, कोई भक्ति का ग्रंथ भी नहीं देखा, स्वामी जी को अधिक सुना नहीं, इसलिए कुछ कहते हैं, इसलिए हमारा सनातन धर्म की बातें सुनेंगे आप लोग, उस पर विश्वास रहेंगे। आज बड़े दुख की बात, अब तो मैं भागवत कहूंगा, मैं नहीं कहा जाना चाहता था, थोड़ा सा आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप लोग सनातन धर्मी हैं, बतलाइए, मैं उसके स्कूल के आरती में मैं नहीं जा सकता, कितने दुख की बात। अरे हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन नास्तिक भी तो आरती में जाते हैं, मैंने कौन सा दोष किया स्वामी जी के विरुद्ध में कहा? अरे दुख की बात, कहते नहीं आरती में नहीं आ सकते, उनके चरणों में पुष्पांजलि, अरे ये तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, गुरु जी हमारे हैं उनको चरण में नहीं, अरे वहां नहीं देंगे अपने हृदय में देंगे, वहां नहीं देंगे जहां बीच में टहलते थे वहां पर मैं दूंगा, इसे कोई रोक नहीं सकता किसी को, इतना तो मोहम्मदन भी नहीं किए थे। खैर उनको सद्बुद्धि भगवान दें, मैं उनका सब समय, आज तक मैंने जीवन में स्वामी जी का विरुद्ध कभी नहीं बोला, आप विश्वास रखेंगे, मैंने जीवन में कभी भी इस कौन का विरुद्ध मैंने नहीं किया, आज तक अपना बच्चा समझ करके इन लोगों को मैंने आदर किया, इनको पालन पोषण किया, और अभी भी ये लोग जो कुछ कहें, हम हमारे ये बच्चे हैं, मैं इनका सबसे पालन करूंगा पोषण करूंगा, इनका विरुद्ध में कभी कुछ नहीं कहने का, वैष्णव लोग क्यों कहेंगे। आज मैं रामचरित्र की कथा पर आ रहा हूं। रामचंद्र जी को आज गद्दी पर बैठाना था, राज्याभिषेक देना था। भरत जी विवाह के बाद ही में शत्रुघ्न भैया को लेकर अपने मामा के यहां गए हैं, दशरथ जी ने नहीं भेजा, बल्कि उनके मामा आकर के, कैकेयी के मामा स्वयं आकर के ले गए, ये तुम्हारे नाना जी अब अवस्था बहुत हो गई है, तुमको दर्शन करना चाहते हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं, बेटा चलो। भरत जी ने कहा अकेले तो मैं नहीं जाऊंगा, हमारा भैया छोटा शत्रुघ्न भी जाएगा, उसको लेकर के चले गए। इधर में रामचंद्र जी को सारी प्रजाओं ने महाराज दशरथ को कहा, अब आपका बेटा राम बहुत योग्य हो गया है, हम लोग चाहते हैं कि उसका आप राज्याभिषेक करें, आप बैठे रहें, आप देखिए ऊपर से छत्र छाया की भांति, और आपका बेटा सब काम करे, अब जो राजपद उसको देना अच्छा, राजा भी रहेंगे किंतु ये युवराज होगा। ये ठीक है, वशिष्ठ को अजय भाई जरा देखो तो अच्छा सा दिन, अरे कल ही दिन अच्छा है, कल ही दिन अच्छा है तो ठीक है, राज्याभिषेक होगा कल, कोई उन्होंने चिंता नहीं की। रात में यह खबर चारों तरफ में गई, मंत्राव को भी खबर मिली, उसने जाकर के कैकई से कहा, अरे तू चुपचाप सोई हुई है, तुमको कोई चिंता नहीं है, कल राम का जो अभिषेक होगा राजपथ पर। बड़ी खुश होकर के कही, अरे राम का अभिषेक होगा, वो तो मेरा लाडला बेटा है, भरत से भी अधिक मैं प्यार करती हूँ, इसलिए आज मैं अपने गले का हार तुमको, अपने हाथों से कुबड़ी को पहनाया, कुबड़ी ने निकाल करके फेंक दिया, चलो पागल तुम बुद्धि नहीं दुर्बुद्धि, अरे कौशल्या कल राजमाता होगी और तुम होगी चेरी, उसकी दासी बनेगी, कभी कोई बात नहीं है, भरत से अधिक मेरा राम प्यारा है, बहुत खुशी का। सिखाई पढ़ाई करने लगी, और तो जो होनी थी जोग माया आकर उनके सिर में बैठ गई और उल्टा करा दिया, उसने बर मांगे, आ जाए बर मांगे, आई एम थिंकिंग दैट यू आर नॉट अंडरस्टैंड बट इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, थोड़ा सा बोलो तो संक्षेप में बोलो।
I'm just telling about the pastime of Lord Ramchandra, when today, in this day, they want to enthrone him as the next king.
You can stand up. टूट गया, उन्होंने हाथ से उठा लिया, बड़ी वीर थी, उन्होंने कहा जी बर मांगो। दूसरी बात, महाराज दशरथ को 360 रानियां थी किंतु किसी को पुत्र नहीं था। एक दिन शिकार खेलने के लिए गए, करते 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 कई कई नरेश के पास में गए, रात में वही रह गए। महाराज कैकई ने अपने बेटी कैकई को कहा कि ये महाराज कौशल्या के नरेश आए हुए हैं, तुम इनकी सेवा शुश्रूषा का भाग तुम्हारे ऊपर में। उस समय कैकई का विवाह नहीं था, बड़ी सुंदरी थी, बड़ी शील स्वभाव की अच्छी, उन्हें बड़ी सेवा की महाराज दशरथ की। दूसरे दिन जब ये जाने को हुए तो महाराज दशरथ जी ने कहा उनसे, आप मेरे मित्र हैं, मैं आपसे कोई चीज मांगना चाहता हूँ। कहा जी मांग लो, क्या चाहते? तुम्हारी लड़की बड़ी सुंदरी है, बड़ी गुणवती है, रूपवती है, शीलवती है, आप हमारे साथ में उसको दे दीजिए, मैं उससे विवाह करूंगा। नहीं नहीं बात तो अच्छी है किंतु मैं तेरे साथ में इसका विवाह नहीं दूंगा। ये क्यों? यदि आप ये प्रतिज्ञा करें कि इससे जो पुत्र पैदा होगा वही राजा का अधिकारी होगा, वही राजा बन पाएगा, तब तो मैं दूंगा। महाराज दशरथ ने कहा ये तो मेरा सौभाग्य हो गया, 360 रानियों से कोई लड़का नहीं, हमारी उम्र कहाँ कितने हजार वर्ष की हो गई, कोई बेटा नहीं, इसके गर्भ से यदि बेटा होगा तो मैं यही तो राजा होगा, उनको क्या पता था जैसे सबको पुत्र हो जाएगा उनको राम। इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा की जो हो इसके गर्भ से जो बच्चा होगा वही राजा होगा, उसी को मैं राज्य दूंगा। बात तो पुरानी हो गई है, बेटा नहीं हो रहा था, चार बेटे उनके हो गए, राम लक्ष्मण भरत, किंतु उस समय उनको याद नहीं थी, बड़ा पुत्र ही राज का अधिकारी होता है और सभी प्रजाएं कह रही हैं, कैकेयी की भी सहमति थी, इसलिए उन्होंने ऐलान कर दिया। किंतु ठीक समय पर बिगड़ गया बात, उन्होंने कहा जी 14 वर्ष के लिए राम को वन से भेजना पड़ेगा और राम भरत को ही राज्य दे। रामचंद्र जी ने हंसते हुए स्वीकार किया और अपना सारा धन जो उनके पास में था उन्होंने दान कर दिए ब्राह्मणों को, और बड़े प्रेम से जाने लगे। सीता जी ने कहा जी मैं आपके साथ में रहूंगा। लक्ष्मण जी ने, मैं भी आपके साथ में रहूंगा। बहुत सी बातें हुई, वो बहुत विस्तृत हो जाएगा, इसलिए संक्षेप में आगे चल रहा हूं। बड़ी मुश्किल से सीता को समझा नहीं सके, सीता जी को ले लिया, लक्ष्मण जी को भी ले लिया। कई कई ने कहा बन जा रहे हैं, अब मैं आपको साधु का वेश देना चाहती हूं, बलकल वस्त्र, बलकल माने पेड़ों की छाल का वस्त्र, राम ने के मुझे शास्त्र। सीता लक्ष्मण को देने लगी, वशिष्ठ ने कहा गरीब तू क्या कर रही है, अरे तुमने राम के लिए बन मांगा है, लक्ष्मण और इसके लिए तो नहीं, ये तो इसी बीच में जाएंगे। महाराज दशरथ ने कहा हमारा सारा वैभव खजाना और सब सेना इनके साथ में जाएगी। उन्होंने कहा तो मैं लेकर के सुना राज्य क्या करूंगी, देना है तो सबको साथ में दो, और नहीं तो नहीं, मैं सुना राज्य लेकर के क्या करूंगी। वशिष्ठ ने और राम ने भी कहा ठीक। सीता जी को ऊपर से कपड़े के ऊपर से बलकल वस्त्र पहनाया और सभी लोग रोने लग गए। महाराज दशरथ उन्होंने, वशिष्ठ जी ने और उनकी पत्नी ने उसको बहुत गाली गलौज की, कहा जी तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, लक्ष्मण जी तेने यहां तक कहा कि आज आदेश रामचंद्र जी दे तो भरत को, और कल ये कह कही सबको मैं एक बाण से सबको खत्म कर दूंगा, राम जी खबरदार ऐसा मत करना, समझा बुझा करके लेकर के गए। महाराज को पता लगा, भरत जी को उनकी आंखें फड़कने लगी, बाईं भुजाएं फड़कने लगी, उनके शरीर में रोमांच होने लगा, बिना मेघ का लाल खून बरसने लगा आकाश से, बिजली कड़कने लगी, गधे रोने लगे, कौवे रोने लगे। अजय क्या हो गया, वो जरूर विपत्ति पड़ी है अयोध्या। उन्होंने मामा जी से कहा जी मामा जी मैं अब भर जाऊंगा, कुछ जरूर कुछ अनहोनी है। जब अयोध्या में आए कोई भी स्वागत करने के लिए नहीं निकला, पहले आते थे तो हजारों नर नारी उनका स्वागत करते थे, महाराज दशरथ खुद रथ लेकर के राम सब लोग आते थे, आज कोई नहीं आया। अयोध्या विधवा वीरान पड़ी हुई है, खजे क्या बात हो गई। तो वो सोचा जैसे हमारे पिताजी तो कई कई के यहाँ रहते हैं, कई कई के घर में होंगे, मेरी मैया के पास में, वहां गया तो देखा जी कई कई का सिंदूर उठ गया है, विधवा जैसा बनी हुई है। अरे मैया पिताजी कहाँ है, पिताजी तुम्हारे तो गोलोक सिधार गए मर गए, भैया राम कहाँ है वो तो बन गए, लक्ष्मण कहाँ, मेरी भाभी कहाँ वो भी बन गए, क्यों, मैंने तुम्हारे राज्य के लिए मैंने उनसे मांगा, और कहते हैं वह राम 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 कहा और बस समाप्त, तुम्हारे राज्य के लिए मैंने मांगा था, राम वन में चले गए अपनी पत्नी और लक्ष्मण को लेकर, कहा है तुमने क्या किया, आज यदि राम हम पर नहीं बिगड़ते तो आज तुम्हें कत्ल कर देता, किंतु तुम्हें कुछ बात नहीं करूंगा, आज से तुम्हारा हमारा मैया और बेटा का संबंध सदा के लिए समाप्त, ये समझो, जिनके प्रिय न वय देही राम वय देही तजिए कोटि वैरी सम जद्दप परम शनि, आज से तू मेरी मैया नहीं मैं तुम्हारा बेटा नहीं, खबरदार मत कहना। और यह कहकर राम को मनाने के लिए चले, सारी अयोध्या के सारी लोग गए, महाराज वशिष्ठ जी भी गए, महाराज जनक गए, सारी प्रजाएं गई, कौशल्या और कैकई भी जा रही थी, कौशल्या और सुमित्रा जी जा रहे हैं। कैकई ने देखा जी तो बात बिगड़ गई, हमने इसके लिए राज्य मांगा और ये बेटा का और मैया का संबंध भी खत्म कर दिया और राज्य भी नहीं लिया, बड़ी दुखी हो गई। ये तुलसी की रामायण की ये बातें कह रहा हूं इसलिए कि वो नास्तिक या मायावादी नहीं थे। इसके बाद में जब चले कई रोने लगी, कई कई उनके पास में कौशल्या के पास, बहन भरत से कहो जी हमको भी ले चले, तुम्हारी बात को टाल नहीं सकती, मैं उसे नहीं कह सकती, वो मेरी बात नहीं मानेगा, हमारे पास ही नहीं आने देगा, इसलिए कौशल्या अच्छा बहन तू चल, भरत कुछ नहीं कहेगा, उसको भी ले लिया। गए कहाँ गए, चित्रकूट, वहां पर मिलन हुआ, वहां पर जब पहुंचे तो सारी एक दिन पहले भरत जी कौशल्या मैया के पास में, मैया मैं तेरा बेटा हूं, अतः हाँ तू बेटा है, मेरी बात मानेगी या तो? हाँ जरूर मानेगी। तो राम भैया से कह दे कि यह राज्य वो फिर से ले ले और मैं उसकी दास होकर के सेवा करूं, तेरी बात नहीं हटा सकता। कौशल्या ने कहा जी ये मैं कैसे कह सकती हूँ, ये मैं नहीं कह सकती, तो मैं क्या गलत कर रहा हूं? नहीं गलत नहीं, तुम ठीक कर रहा है। जहां वो मर्यादा पुरुषोत्तम है राम, वहां तुम भी प्रेम की मूर्ति हो, तुम भी अपने पद पर ठीक हो, वो भी अपने पद पर ठीक है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। निराश हो गए बेचारे। वशिष्ठ के यहां गए गुरु के चरणों में, गुरु जी आपकी बात राम नहीं ठेलेगा, आप जरूर उसे कहिए मैं तो अनिति, मैं कोई बात तो गड़बड़ तो नहीं कर रहा, मैं यही चाहता हूं कि हमारे भैया राजा हों और मैं उसकी विधिवत सेवा करता हूं, आप उसे कहिए। वशिष्ठ जी ने कहा मैं नहीं कर सकता, राम गलत नहीं कर रहा किंतु तुम भी गलत नहीं कर रहे, मैं इसका निर्णय नहीं समझ पा रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कल सभा होगी, उसमें मैं महाराज जनक को कहूंगा वो राजर्षि हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्रह्मर्षि हैं, साधारण आदमी नहीं है, वो हमसे भी बहुत बड़े हैं, भले ही वो राज गृहस्थ हो रूप में हैं, इसलिए मैं उनसे कहूंगा जी इसका निर्णय कर दें। अच्छा ठीक, बस कल सभा लगी। भरत जी गए उनकी सुनैना जी के पास में, मैया तू तो मेरी सास है ना, राम की सास है तो मेरी भी सास है, तुम्हारी लड़की वन में जा रही है, तुम्हारा ये जमाई जा रहा है वन में, तुम उसको रोको, तुम बस उनसे महाराज जनक से कह दो जो हमारा पक्ष लेकर के थोड़ा सा कह दें और वो अयोध्या लौट चले, तुम्हारी बेटी भी लौट आएगी। कहा जी मैं तो कह तो दूंगी किंतु वो क्या करेंगे वही जाने। उन्होंने रात में उनसे कहा, उन्हें कहा जी मैं कुछ नहीं कर सकता, जो प्रभु कहेंगे वही मैं कहूंगा, होई है सोई जो राम रचि राखा, प्रभु रचि राखा, मैं वही करूंगा। ठीक है, बड़ी भारी सभा जुटी। सभा में एक तरफ में ऋषि लोग बैठे सामने, एक तरफ में भरत जी शत्रुघ्न जी बैठे, एक तरफ में माताएं बैठी, एक तरफ में सब ऋषि महर्षि सभी लोग बैठे, बड़ी भारी सभा हुई, हजारों ऋषि महर्षि वहां पर आ गए बैठे, महाराज जनक भी बैठे। उस समय में जनक जी ने कहा भरत को तुम्हारा पक्ष क्या है बतलाओ, तुम क्या चाहता है? मैं यही चाहता हूं कि राजा का बेड़ा बेटा राजा होता है, ये महाराज दशरथ के बड़े पुत्र हैं, मैं इनका छोटा भैया हूं, मैं चाहता हूं कि ये जो बन जा रहे हैं लौट करके और अयोध्या का राज संभालें, मैं इनकी सेवा करूंगा। राम जी को कहा जो अब अपना पक्ष तू प्रस्तुत करो। उन्होंने कहा जो मैं अपने पिताजी की बात मान करके मैं वन में 14 वर्ष रहना चाहता हूं, ये मेरा पक्ष है। वह कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय बरु बचन में जाए, इसलिए मैं ये चाहता। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और बोले प्रभु मैं क्या कहूं, मुझको सद्बुद्धि दो। उन्होंने कहा जी ठीक है मैं तुम लोगों को बतला, हमारे ऊपर में विश्वास है, हमारी बात मानेगा तुम दोनों? भरत जी ने कहा जी जरूर मानूंगा, राम ने कहा जी जरूर मानूंगा। उन्होंने कहा देखो भरत की जीत हुई, भरत जी का प्रेम ऐसा अथाह अनंत है जिसमें हजारों पर्वत डूब जाएंगे, राम का प्रेम कैसा है अथाह अनंत, पैसिफिक या अटलांटिक ओशन है, और रामचंद्र जी कैसे हैं, राम ये हिमालय की तरफ बहुत ऊंचा, उसको भरत का प्रेम डुबा दे सकता है किंतु फिर भी राम का जो ये मर्यादा है ये टल्स इधर से उधर नहीं होगा, इसलिए भरत की जीत तो है। जहां उन्होंने कहा सभी लोग हंस उठे, बड़े प्रसन्न भय, भरत जी तो आनंद का आर पार नहीं, जितने अयोध्यापुरी के निवासी थे सभी लोग बोले ये भाई अब तो ठीक है राम अब लौटेंगे, क्योंकि भक्त की जीत हो गई। हाँ जीत तो हो गई, किंतु एक बात समझो, जीत हो गई किंतु अब राम से पूछो प्रेम किसको कहते हैं ये समझो। तुम अपने मन से सेवा मत करो, ये देखो जी वो क्या चाहता है वैसी सेवा करो। मनमाने रूप में सेवा करने से नहीं होता, वो प्रेम नहीं है, वो तो स्वार्थ है। तुम्हारा इसमें स्वार्थ है, जो लोग क्या कहेंगे भरत जी राजा बन गया और भाई को हटा दिया, इसलिए तुम इसे डर रहे हो। तुम भाई से पूछो जो वो क्या चाहता है उसके अनुसार में करो, तब तुम्हारा प्रेम ठीक है। अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनाप्रतम आनुकुलीन कृष्णानुशीलनम भक्ति। भक्ति किसको कहते हैं? हमारी कोई भी ख्वाहिश न हो, इच्छा न हो, कर्म ज्ञान योग तपस्या व्रत होम स्वाध्याय इससे दूर रहो। तुम इस देव क्या चाहता है इस विषय को समझ करके तन मन वचन और भाव से उसकी सेवा करो। तुमने सेवा की अपनी मन से, उनको लगी है प्यास और तुम पंखा दे रहा है, ये तो ठीक नहीं। वट इज प्रेम, वट इज भक्ति, ये सब थे। अन्य अभिलाषिता शून्यम, स्वामी जी हैज एक्सप्लेन इट, भक्ति स्वामी सिंधु, वी शुड राइट नो फैट देर इज नाउ ज्ञान कर्म एक्सेट्रा ओनली कृष्ण भक्ति और देर इज नथिंग देयर, वी विल नॉट वॉन्ट एनी थिंग फॉर अस, नो सेंस ग्रेटिफिकेशन इज देयर। What Krishna wants, we will try to do by tan, man, vachan. Understand?
Word, mind and speech.
By three things. And also by bhav. Bhav is above all. And what Krishna likes, we should do. Then it is bhakti, otherwise no. If Ram, Krishna is wanting that, give me a glass of water. No, you should be, I'm giving thanks. This is not seva. इसको सेवा नहीं कहते हैं। इसलिए भक्त को कहा जे तुम राम से पूछो राम क्या चाहते हैं, उनका आदेश पालन करो, उससे वो तुम्हारी भक्ति होगी, प्रेम होगा। तो तुमने प्रेम में तो डुबा दिया, किंतु सत्य तो जो प्रेम किसको कहते हैं तुम पूछो जे वो क्या चाहते हैं वैसा करो। राम ने कहा तुम्हारी जीत भैया हो गई, बात ठीक है, मैंने तुम्हारा राज्य ग्रहण कर लिया, मैं अयोध्या का राजा मैं हूं, मैंने ग्रहण कर लिया, किंतु भैया एक बात करो, तुम अयोध्या की 14 वर्ष तक हमारा प्रतिनिधि बन करके तुम उसकी सेवा करो, तब तक मैं आ जाता हूं। समझ में आ रहा है ना, मैंने राज्य ले लिया, मैं राजा हो गया, ठीक है, किंतु तुमको आदेश दे रहा हूं, तुम हमारे छोटे भैया सेवक हो ना, इसलिए अयोध्या की तुम रक्षा करना, जब तक नहीं आता हूं किसी को कष्ट अयोध्यापुरी क्यों ना हो, हाँ तब तक पुराना मैं ठीक दिन पर 14वें वर्ष के ठीक दिन पर मैं जरूर आ जाऊंगा। भरत जी की आंखें खुली, ओ अब तक मैं अपने लिए देख रहा था, अब राम के हृदय से मैंने देखा, ठीक आप अपनी खड़ंग हमको दे दीजिए और मैं लेकर के वहां प्रस्थापन करके आपका प्रतिनिधि बन करके उसकी सेवा करूंगा। अयोध्या में मैं नहीं जाऊंगा, मैं नंदीग्राम में रहूंगा। भक्त का प्रेम जैसा विश्व में प्रेम नहीं, तो इस तरह से ये है। यू कैन एक्सप्लेन समथिंग, भक्ति इष्ट जो हमारे राधा कृष्ण हैं, उनके सुख के लिए ही हम कुछ करेंगे, अपने लिए नहीं। यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं, उनसे कहा कि हमको रुपए पैसे धन संपत्ति चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, तो ये बनियागिरी हो गई। बनियागिरी मत मनो, कृष्ण प्रसन्न होना चाहिए, उनसे कुछ मत मांगो। यदि कुछ अपना धन जन संपत्ति अपना सब कुछ मांगता है और हमारी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, हे प्रभु जी बेटी का विवाह कर दो, अरे ये तो उसके कर्म से तुम्हारे प्रयत्न से ही हो जाएगा। धन संपत्ति मत मांगो, नहीं तो सोने की लंका रावण की कहां गई, खत्म हो गई, मत मांगो। तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी वो चीजें। इसे कोई भी आकांक्षा मत रखो, आकांक्षा रखो एक, हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाए, बस इसका नाम शुद्ध भक्ति है। कृष्ण चाहते हैं जरा गोपियां मान करें हमसे, तो गोपियां मान करती हैं, अपने सुख के लिए नहीं श्रृंगार करती। गोपियां किसके लिए श्रृंगार करती हैं? हमारे प्रियतम कृष्ण को प्रसन्नता होगी, इसलिए केश को सवारती हैं। कृष्ण प्रसन्न हुए इसलिए कहती हैं हमारे कुंज में मत आना, उधर रहना। कृष्ण को कहती हैं धूर्त चोर, किसलिए कहती हैं? वेदों की प्रार्थना से भगवान कृष्ण नहीं प्रसन्न होते, गोपियों की गाली सुनकर के प्रसन्न होते हैं। कैसे प्रभु हैं? सुबल सिद्धाम का जूठा खाते हैं, नंद बाबा का जूठा खाते हैं, अपने खाते हैं और बेटे को खिला रहे हैं। गोपियां क्या करती हैं? हमारे कुंज से निकल जाइए सीधे, काले लोगों से उसका कोई भी संबंध नहीं है, ऐसी बात कह रहा। कृष्ण एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, यहां तक कि गोपियों की चरण में अपनी बंसी को रख देते हैं, कहते हैं कि हमको क्षमा करना, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक, कहां गोपियों का प्रेम उन्नत, अपने लिए कुछ नहीं करती, इसलिए गोपियों की आराधना सबसे सर्वोत्तम है। अब चलिए आगे बढ़ें, देखिए जो भक्ति क्या चीज है। तुलसी जी ने कैसे श्रीमद भागवत की बातों को ले आया। रामचंद्र जी अयोध्या से लंका से लौट करके आ गए, पर तो रामचंद्र जी ने सीता जी को कह दिया जैसे तुम जहां इच्छा चली जाओ। सीता जी ने कहा मैं कहां जाऊं? लक्ष्मण तुम आग जला दो और मैं उसी में जल करके मर जाऊंगा, मैं जीवित नहीं रहना चाहती। लक्ष्मण जी ने भाई के तरफ में देखा, भाई जी चुपचाप गंभीर होकर के बैठे हैं, उन्होंने आग की चिता जलाई। सीता जी ने कहा रावण ने भले ही हमको स्पर्श किया, लाचारी की हालत में, बेबस की स्थिति में, बेबस जानते हैं ना, हेल्पलेस उस अवस्था में, किंतु मेरा मन रावण को स्पर्श कभी यदि किया हो तो मैं जल करके मरूं, अथवा राम हमारा मन राम के अतिरिक्त और किसी को स्पर्श नहीं करता है तो आग तू शीतल हो जाए, तू मेरी मैया बन जा। आग एकदम बर्फ के समान में सुशीतल हो गई, अग्नि देवता आकर के उनको अर्पण किया। ये सीता जी परम पवित्र हैं। महाराज दशरथ आए, वायु देवता आए, अग्नि देवता आए, हवा देवता आए, सब चारों तरफ के दिशाओं के देवता लोग आए, महाराज धर्मराज और सभी लोग आकर के कहेंगे सीता जी पर चढ़ा, सीता जी को ग्रहण किए। इसमें भी एक मिस्ट्री है, रहस्य है। उन्होंने पहले ही रावण के युद्ध के पहले ही, जबकि विभीषण वो खरदूषण से साथ में युद्ध होने वाला था, राम की सीता को हरण करने के लिए मारी जाने वाला था, उसके पहले सीता जी को अग्नि को सौंप दिया था ये दंडकारण्य में, और वो छल बहाना करके लोगों को समझने दिया, अग्नि से फेर ले लिया। लोगों ने सीता समझा ये सीता को भला सीता को त्याग कर सकते हैं। अब चलिए आगे, अयोध्या में आए, 11,000 वर्ष राज्य किया। सीता जी गर्भवती हैं, किसी धोबी ने कहा ये सीता जी अपवित्र है, मैं राम नहीं हूं, अपनी स्त्री को एक लात मारा, शाम हो गई अब आती है, 9 बजे रात में कहां थी, मैं राम नहीं हूं जो तुम्हें ग्रहण कर लूंगा, जाओ घर से निकल जाओ। और भी कहीं ऐसी बातें हुई, दूत ने आकर के उनको बतलाया ऐसी बात मैंने सुना, ओहो बात तो ठीक नहीं है, वो तो प्रजारंजन धर्म के सेतु मर्यादा के सेतु हैं। इसलिए उन्होंने कहा ठीक है, सीता कह रही थी जय ऋषियों के यहाँ जाऊंगा, उनकी पत्नियों को कपड़े लत्ते हार और ये सब दूंगी। तो इसलिए राम ने कहा जिसे तू वन में कल जाना और कपड़े लत्ते ले जाओ और अलंकार ले जाओ उनको देना, और लक्ष्मण जी को कहा जी इनको छोड़ करके चली आना। बस लक्ष्मण जी उनको लेकर के चले, जितने कड़े कड़े आदेश हैं लक्ष्मण जी पालन करते हैं। ये शिव जी हैं ना, शिव जी का अतिरिक्त भगवान के कृष्ण के और लोग पालन नहीं कर पाते। उन्होंने देखा कि लोग संसार के लोग ऐसे हैं जो भगवान को प्रसन्न करके और उनका विरुद्ध आचरण करते हैं, इसलिए हमको छिपा दो, कहेंगे धन दो पुत्र दे ये दो, धनम दे ही जसो देही सुंदरी भारजांग देही योग्य पुत्रम देही 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 देही। मैं बड़ा घबरा जाता हूँ वही देही देही से। तो हमको जरा छिपाओ, कहना है ये तुम ही ब्रह्म है, सर्वम खलिदम ब्रह्म, ये जाकर के कहना तो ये तुम ही ब्रह्म है, अब भगवान से प्रार्थना करने की जरूरत क्या है। इसलिए शंकर जी को कहा, शंकर जी प्रभो हमको इतना कड़ा आदेश देते हैं। तो वही शंकराचार्य हुए, शंकराचार्य और कौन है, शंकर जी साक्षात है भगवान के सेवक हैं, उनका आदेश पालन करने के लिए दुष्ट लोगों से भगवान को पिंड छुड़ाने के लिए उन्होंने ये कहा सर्वम खिदम खलवंजम तत्त्वमसि, तुम ही वही हो। अरे भगवान की क्या जरूरत, तुम ही तो वही भगवान है, उनको भगवान को छिपाने के लिए। इसलिए शंकराचार्य जी आचार्य हैं, हमारे सिर पर उनके चरण रहे, उनकी वंदना करते हैं जो प्रभु के आदेश के लिए उन्होंने ऐसा किया। इसलिए उनको कभी भी दूसरा मत समझो जो मायावादी थे, क्योंकि अंत में उन्होंने कहा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते नहीं नहीं रक्षति दुख कृति करणे, मतलब तो कितना सुंदर उन्होंने कहा। इसलिए इसको समझना चाहिए, शास्त्रों में ये सब चीजें लिखी है। अयोध्या में आने के बाद में सीता जी को भेज दिया, लक्ष्मण गए और बोले ये भाभी जीवन भर के लिए तुम्हें भैया ने पर...